الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो आज ये नई आयात यानी आगे की आयात हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, 15 से लेकर के 21 तक सूरह इनआम की, अनआम की मारिफुल कुरान जिल्द नंबर 3 से। तो पहले हम इनका तर्जुमा पढ़ लेते हैं, फिर खुलासे तफसीर और फिर मारिफुल मसाइल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर अपने हबीब अलैहिस्सलाम से मुखातब होके फरमाते हैं, कुल कह दीजिए, इन्नी अखाफु, बेशक मैं डरता हूँ, इन असैतु रब्बी, कि मैं अपने रब की नाफरमानी करूँ। असा असा जो है वो सौद से, इसका मतलब होता है ऐन और सौद के साथ, के नाफरमानी करना, इनकार कर देना, किसी के हुक्म का इनकार कर देना, नाफरमानी कर देना। तो मैं इस बात से डरता हूं कि मैं अपने रब की नाफरमानी करूं। अजाब यौम अजीम, ठीक है, एक बड़े दिन के अजाब से, यानी इन्नी अखाफू अजाब यौम अजीम, कि बेशक मैं डरता हूं एक बड़े दिन के अजाब से। इन असैतु रब्बी, ठीक है, तो अब क्या मतलब कि अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूंगा तो ये अजाब मेरे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो फिर मैं इस अजाब का मुस्तहिक बन जाऊंगा। तो मैं कयामत के दिन के अजाब से डरता हूं, जो कब आता है वो अल्लाह की नाफरमानी की वजह से आता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कोई अल्लाह की नाफरमानी करे और करते करते ही दुनिया से चला जाए और फिर उसके ऊपर अजाब ना आए, ठीक है। तो इस वजह से ये एक लाजिम और मलजूम चीज है, बिल्कुल जैसे हमारे मुशाहिदे के अंदर आग जलाती है, राइट। आग में कोई हाथ डाले तो अब वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि शायद जलाए या शायद ना जलाए, किसी को शक होता है इस बात के ऊपर कि शायद जलाएगी और हो सकता है ना भी जलाए, ठीक है, नहीं, यकीन है ना हमें कि अगर आग में हाथ डाला है तो ये जलाएगी। तो इसी तरीके से ये भी यकीनी बात है कि गुनाह जो है तो उसका अजाब हो कर रहेगा। क्या नाम था उनका, हजरत तकी उस्मानी, रफी उस्मानी के जो शेख थे, उनके वालिद साहब ने जिनके पास भेजा था उनका, कराची के, क्या नाम था, फरमाया करते थे कि गुनाह के बाद तुम्हें उसकी सजा ना मिले, डॉक्टर अब्दुल्हई रहमतुल्लाह रहा जजाकुल्लाह, डॉक्टर हजरत अब्दुल्हई आरफी रहमतुल्लाह रहा, कि अगर यानी तुम्हारे जो चीज चाहे तुम गुनाह कर लो, लेकिन अगर तुम्हें उसकी सजा ना मिले ना, तो तुम मेरा नाम बदल देना, तुम मेरा नाम बदल देना। है जिस तरह हम कहते हैं ना, नाम बदल देना से क्या फर्क पड़ता है भाई, कोई मेरा नाम बदल के थोड़ी सकता है। तो ये उर्दू जुबान का एक मुहावरा है, ठीक है ना, यानी मैं इतनी यकीनी बात कर रहा हूं कि ये होकर रहेगी, इससे तुम बच नहीं सकते हो, ठीक है। यही यकीन अब हमारी जिंदगी से खत्म हो गया। अब हम मुसीबतें आती हैं तो हम उनको गुनाहों से नहीं जोड़ पाते हैं, नहीं जोड़ते हैं, और गुनाह करने से पहले हम इस बात से बिल्कुल बेपरवाह होते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा, सजा मिलेगी, पिटाई मिलेगी। हत्ता कि अगर हमारे इख्तियार में उर्दू की डिक्शनरी होती है ना, तो गुनाह की तारीफ जो है ना वो पिटाई से तब्दील कर देते हैं, उर्दू की डिक्शनरी। अरबी को तो हम चेंज नहीं कर सकते भाई, लेकिन उर्दू जुबान तो फिर आखिर को लश्करी जुबान है ना, वक्त के साथ साथ जो है वो बदलती भी बहुत सारी चीजें। तो गुनाह इज इक्वल टू पिटाई, ठीक है, सजा, क्योंकि समझ में नहीं आता ना, ये कोई डार्क चॉकलेट की तरह की हमने चीज समझ ली है, डार्क चॉकलेट, ठीक है ना, जो कि है तो चॉकलेट, खा करके कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा जो है वो पता नहीं कुछ होगी, कोई कड़वी वड़वी छोटी सी चीज होगी, जरा डिफरेंट किस्म की कैंडी होगी ये गुनाह। तो गुनाह का लफ्ज हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो गुना इज इक्वल टू पिटाई। अभी तक पिटाई जो है वो हमारी डिक्शनरी के अंदर, उसकी हमारे जहन में मफहूम तब्दील नहीं हुआ पिटाई का, पिटाई का मतलब पिटाई समझते हैं अभी हम, तो गुना का मतलब भी पिटाई। तो कुल इन्नी अखाफु इन असई तो रब्बी अजाब यौमिन अजीम मैं युसरफ अनहु, जिसके ऊपर से वो टल गया, जिसके ऊपर से उसको फेर दिया गया, यानी आ रहा था अजाब इसकी तरफ, लेकिन फिर उसको किसी और तरफ डायरेक्ट कर दिया गया। यौम इज़न, उस दिन कयामत के दिन, यौमिन अजीम जिसकी पिछली आयत में बात हुई थी, तो उस दिन जिसके ऊपर से अजाब फेर दिया गया ना, फकत रहिमहु, तो तहकीक के अल्लाह ताला ने उसके ऊपर रहम फरमाया, यानी वो मरहूम हो गया जिसके ऊपर रहम किया गया, रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ना मरने के बाद, रहमतुल्लाह अलैह नेक लोगों के लिए। तो ये रहमतुल्लाह अलैह और मरहूम कौन होता है कि जिसके ऊपर से अल्लाह का अजाब जो होता है वो फेर दिया जाता है। वदालिकल फौजुल मुबीन, ये भी उसी तरह की एक चीज है कि बाय डिफॉल्ट तो सबके लिए अजाब है, ठीक है ना, अब उस अजाब से निकलने के लिए अल्लाह के हुक्मों की फरमाबरदारी करनी पड़ती है, तौबा करनी पड़ती है, जो गलतियां हो गई उनसे तौबा करनी पड़ती है, ठीक है, वरना अजाब इज कमिंग आवर वे एनीवेज, ठीक है ना, यानी वो तो हमारी डायरेक्शन में आ ही रहा है, अब उससे बचने का तुमको तरीका नहीं, ये नहीं है कि अजाब आ नहीं रहा है, हम उसको जो है वो अपनी तरफ बुला रहे हैं, नहीं, आ रहा है, अब उससे बचने का कोई रास्ता नहीं, और वो रास्ता जो है वो अपने परवरदिगार से रुजू करना, यानी तौबा करना है, और जो है वो उसके हुक्मों के की पासदारी करने की कोशिश करनी है, तब वो टल जाएगा। उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने फरिश्ते रखे हैं, वो फरिश्ते जो है ना वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड इस दुनिया के अंदर भी हमारे लिए बना देते हैं, और आगे की जिंदगी में भी वो प्रोटेक्टिव शील्ड बना देते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर ये बात हमें दुनिया में अगर नहीं समझ में आ रही दुनिया की जिंदगी में, तो फिर कब्र की बात देखें, कब्र में जब किसी को डाला जाता है तो डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट का मतलब जो कि हर एक के साथ होना है, वो क्या है कि उसको जो है वो कीड़े भी खाएंगे, उसको जो है वो सांप भी आकर के डसेंगे जो जमीन के अंदर मौजूद हैं, है ना, ये तो नहीं होता है कि कब्रिस्तान ऐसी जमीन में बनाया जाता है कि जिस जमीन के अंदर जो है वो अर्थवर्म्स नहीं होते, और वहां पे जो है वो सांप नहीं होते, और वहां पे जो है बिच्छू नहीं होते, वहां पे जो है वो कोई और किस्म की मखलूक नहीं होती, कॉकरोच कॉकरोच नहीं होते, है ऐसी जमीन में जो है वो कब्रिस्तान बनाते, नहीं, कब्रिस्तान तो किसी ऐसी जमीन में नहीं बनाते जिसको पहले सैनिटाइज किया गया हो कीड़ों मकोड़ों से, ठीक है ना, कब्रिस्तान तो आम सी जमीन पे बनता है, तो अब वहां पर तो हर एक को आकर के खाना है, और हमारा तो दीन तो यही है भाई कि भाई रूह जो है वो वापस आ जाती है बदन के अंदर। अब खाली इतना मसला होता है, फर्क कितना होता है राइट, हमारी इस दुनिया की जिंदगी में और कब्र की जिंदगी में क्या फर्क है। रूह उधर भी मौजूद है जिस्म के अंदर, रूह इधर भी मौजूद है जिस्म के अंदर। फर्क जो है ना वो सिर्फ रूह की एक लेवल ऑफ पावर, वोल्टेज डाउन हो जाती है बस, ठीक है ना। जो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स हैं या तो और भी हम लोग, वोल्टेज तो सभी औरतें भी समझती हैं, है ना। बल्ब जो है ना वो आपका चल रहा होता है ना, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत होता था वोल्टेज जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है कराची के अंदर, ठीक है। तो अभी जो है ना वो भी बल्ब जो है ना वो कभी बिल्कुल ब्राइट हो जाता है और वोल्टेज डाउन हो जाती है, तो क्या होता है जी, बल्ब की रोशनी जो है वो मध्यम पड़ गई है, तो फौरन कहते हैं ये वोल्टेज कम आ रही है, वोल्टेज कम आ रही है। बस यही फर्क है कि हमारे अंदर जो रूह मौजूद है ना, इसकी वोल्टेज कम हो जाती है। इस दुनिया के अंदर वोल्टेज ज्यादा है, इस वजह से हाथ पैर चला रहे हैं, जुबान भी चला रहे हैं, आंखें भी चला रहे हैं, कान भी चल रहे हैं, राइट। और जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी ऑपरेट कर रहा है, सारे सिस्टम्स हमारे ऑपरेट कर रहे हैं। जब कब्र में जाते हैं, ये नहीं होता कि रूह खत्म हो गई और रूह फिर अब कहीं और चली गई और वो नहीं, ये उसी दुनिया वहीं पर कब्र की, राइट, जेरे जमीन। ये एक अल्लाह ताला ने एक जमीन, एक पूरी की पूरी दुनिया बनाई हुई है, हमें नजर नहीं आती, क्योंकि ये भी हमारी वोल्टेज का एक, ये हमारी दुनियावी जिंदगी में वैसे तो रूह की वोल्टेज पूरी है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ नुक्स हैं। वो नुक्स क्या हैं कि हमें आलम बरजख नजर नहीं आता, हमारी आंखों को इस दुनिया की चीजें नजर आती हैं, लेकिन इतनी उसके अंदर पावर नहीं है, हमारी आंखों की रूह के अंदर इतनी पावर नहीं है कि हमें आलम बरजख नजर आए। तो इवन इस दुनिया की जिंदगी में भी ना कुछ वोल्टेज जो है वो ऑलरेडी कम है। अब अल्लाह ताला अगली जिंदगी में, कब्र की जिंदगी में, जो हरकत वाली वोल्टेज है ना, जिससे कि हमारा बदन हरकत करता है, उस वोल्टेज को तो खत्म कर देते हैं, लेकिन दूसरी वोल्टेज को जो है वो बढ़ा देते हैं। अब अल्लाह आलम, ये इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हो कि भाई वो एक वोल्टेज की अलग कैटेगरी होती है, ये वोल्टेज की अलग कैटेगरी होती है, इसको बढ़ा दिया, इसको कम कर दिया है। बल्बों में भी शायद इस तरह से करते होंगे ये लोग, लेकिन जिसम में यही होता है। तो अब कौन सी वोल्टेज कम हो गई, हरकत वाली वोल्टेज कम हो गई, अब वो बदन हरकत नहीं कर पाता, लेकिन वो वाली वोल्टेज बढ़ गई जिस वोल्टेज के जरिए से अब आलम बरजख की चीजें नजर आनी शुरू हो गई, है ना। अब वो फरिश्ता आ रहा है जो कि लाकर बिठा रहा है, बिठा कैसे रहा है, वो फिजिकली नहीं बैठ रहे, ठीक है, वो जा करके सवाल पूछ रहा है कि हाँ भाई मन रब्बुक, ठीक है, तो वो नजर आ रहा है, अब उसकी आवाजें भी आ रही हैं इस दुनिया में, ना वो नजर आते हैं ना उसकी आवाजें आती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि बस बदन जो है ना वो उसको कीड़े काटें या उसको जो है फलाना काटे या उसको जो है वो गर्ज से मारा जाए तो उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर से तो रूह खत्म हो चुकी है। नहीं, रूह खत्म नहीं हो चुकी है, रूह मौजूद है, रूह उसके अंदर मौजूद है। जिस तरह अभी हमारे अंदर रूह मौजूद है, उसी तरह वहां पर भी हमारे अंदर रूह मौजूद है। हम ममाती फिरके वाले नहीं है, एक फिरका बना रही है लोगों ने, ममाती, ये जी कुछ भी मौजूद नहीं है बिल्कुल ही, जो है ना वो पता नहीं वो किस किस्म की चीज है, एक्सप्लेन वही खुद ही कर सकते हैं, पत्थर टाइप की कोई चीज उन्होंने इमेजिन कर लिया है कब्र के अंदर। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सही हदीसों से बल्कि कुरान मजीद से भी ये बात साबित है कि वहां पर जो है ना वो मामला चल रहे होते हैं, जैसे फिरौन के मामला जो है वो इसी आलम बरजख के अंदर अजाब वाले चल रहे हैं। कयामत का दिन तो बाद में आएगा उसके ऊपर, तो अलग अजाब होगा उसके ऊपर, अभी जो अजाब हो रहा है फिरौन के ऊपर और उसके ऊपर भी, क्या नाम था उसका, कारून के ऊपर, राइट, वो तो अभी अजाब हो रहा है ना, बाद में तो जहन्नम में डाला जाएगा, वो अलग अजाब होगा। तो ये क्या है, कौन से वाले अजाब की बात हो रही है, इसी को तो अजाब कब्र कहा जाता है, ठीक है। तो सब खाने के लिए आएंगे, अब बाय डिफॉल्ट तो खाने के लिए आ रहे हैं, इस हमारी जिंदा बदन को सब खाने के लिए आ रहे हैं, अब कौन बचाएगा। अब जो है ना वो वही बचेगा जिसको के अल्लाह बचाए, ठीक है। तो युसरफ अनु जो मैं इधन फकद रहमा, तो जिसको अल्लाह बचाएगा वही तो है जिसके ऊपर अल्लाह ने रहम किया, वज़ालिकल फौज़ुल मुबीन, और यही है बड़ी कामयाबी, फौज कामयाबी को, ठीक है। तो हमारे यहाँ बहुत लोगों के बच्चों के माशाल्लाह लोग रखते तो है नाम फैजान, किसी का जो है वो फाइज, किसी का जो है वो फाइजा, राइट, कामयाब होने वाली, कामयाब होने वाला, तो फौज फौज अल मुबीन, खुली हुई कामयाबी जिसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, यानी जिसको समझना जो है ना वो कोई मुश्किल काम ना हो, उसको मुबीन कहा जाता है। जैसे बलागुल मुबीन के अंदर हम बार बार ये बात करते रहते हैं, उसी तरह फौजुल मुबीन, बिल्कुल क्लियर कामयाबी। व इन यमसस्कल्लाहु, और अगर, इन शर्तिया, अगर यमसस्कल्लाहु, अल्लाह ताला पहुंचा दे तुझको, अल्लाह ताला यानी टच करवा दे, मस करना, टच करना, ठीक है, बिवुर्रिन, जरर, तकलीफ, मुश्किल, परेशानी, सख्ती, अगर अल्लाह ताला तुम्हें परेशानी पहुंचाए, सख्ती पहुंचाए, फला काशिफ लहू इल्ला हू, तो कौन है उसके अलावा, इल्ला हू, उसके अलावा कौन है जो कि इसको तुम पर से हटाए, काशिफ लहू, जो लफ्जी माने, वैसे तो नाम भी वही, उसी तरह जिस तरह फौज के नाम रखते हैं उसी तरह जो है काशिफ के भी नाम हमारे यहाँ बहुत कॉमन हो गए। हम अजीब बात है कि बड़ी उम्र के लोगों में, यानी अब तो खैर हम खुद ही बूढ़े हो गए, सही है, लेकिन जिस वक्त हम नौजवान थे ना, तो उस वक्त हम ये बात बड़ा सोचा करते थे कि हमारे जो अम्मा अब्बा की जो जनरेशन थी, और नाना नानी दादा दादी की जो जनरेशन थी, और उसके ऊपर की जो जनरेशन थी, किसी का नाम जो है वो काशिफ नहीं, हमें कभी किसी का नाम नहीं सुना काशिफ, ठीक है ना। लेकिन हम खुद जिस कॉलेज में थे, अल्लाह ताला कॉलेजों को, तो आपने कॉलेजों की थोड़ी और सुन ली ना, उम्मीद है कि सबने छोटे छोटे क्लिप्स जो है वो सुन ली होंगे जो आज आप सबके साथ शेयर की, क्या मामला, अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमा दी है, ठीक है ना, कि इन चीजों को खोल दिया है हमारे सामने, वरना वरना तो हम खैर ना मानने वालों ने तो अभी भी नहीं मान के देना है, वो तो फिर नबी अलैहिस्सलाम की बात उन्होंने नहीं मानी, ना मानने वालों ने, तो हमारी कौन बात मानने वाला है, ठीक है। लेकिन पहुंचा देना तो नबी अलैहिस्सलाम का भी काम था, और हमने भी नबी अलैहिस्सलाम से यही काम सीखा है कि आगे बात पहुंचा देना, मानना ना मानना ये उनका मसला है, और अल्लाह ताला का फैसला है कि किसको तौफीक देनी है सुनने की। बहरहाल, तो बहरहाल हम भी कॉलेज से ही पढ़ करके आए भाई, तो हमारे कॉलेज की जो क्लास थी ना, तो उसके अंदर जो है वो हमारे नाम वाले जो है वो चार थे, और सीनियर एक 1.5 साल से 1-2 साल सीनियर वाले जो थे ना, उनमें भी एक काशिफ साहब थे, उनसे पहले कोई काशिफ नहीं है, अल्लाह आलम पता नहीं है कहाँ से आ गया कि लोगों ने जो है वो अपनी औलादों के नाम काशिफ रखने शुरू कर दिए। बहरहाल, फला काशिफ लहू, तो कोई नहीं उठा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, कशफा यकशिफू का मतलब होता है खोलना, एक्सपोज करना, या जो है वो हटा देना, जैसे ऊपर का लिड जो है ना, जिससे कि कोई चीज छुपी हुई है, पतीली के अंदर कोई चीज है जो कि छुपी हुई है, ढक्कन वो खोल देंगे तो उसके अंदर से वो चीज नजर आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से हटाने के माने में भी आता है कि किसी मुश्किल को हटा देने के लिए, ठीक है, तो कौन है जो कि इस मुश्किल को हटाए, सही है। ला इल्मी, ये भी एक मुश्किल है, ला इल्मी, कम समझी या गलत समझी, ये भी एक मुश्किल है, ये भी एक सख्ती है, ये भी एक मुसीबत है। तो अगर इस ला इल्मी के ढक्कन को कोई उठा दे तो उसको भी काशिफ कहा जाता है, ठीक है, उसको भी अरबी जुबान में काशिफ कहा जाएगा, कि इसने जो है ना, ये जो मुसीबत इनके ऊपर छाई हुई थी ना, ला इल्मी का ढक्कन इनके ऊपर रखा हुआ था, इसको जो है वो हटा दिया, ठीक है, या हकीकत को एक्सपोज कर दिया, हकीकत को सामने दिखा दिया, क्योंकि उसके ऊपर जो चीज छुपी छुपाई हुई थी उसको, उस चीज को हटा दिया, ठीक है। तो मुसीबत को हटाने वाला तो मामला जो है ना, ये यानी हकीकी तौर पर अल्लाह ताला ही है, दुनियावी एतबार से कोई अगर किसी की मुसीबत को दूर करने का सबब बनता है ना, तो उसको सिर्फ सबब कहा जाएगा, ठीक है, वो भी अल्लाह की तौफीक से सबब बना। उसी तरीके से ला इल्मी को दूर करने का भी कोई सबब बनता है, ठीक है ना, आलिम है, शेख है, कोई और है, वो ला इल्मी को हटाने का सबब बनता है, ठीक है। हकीकत में तो ला इल्मी कौन हटा रहा होता है, अल्लाह हटा रहा होता है इनके जरिए से, तो उस्ताद और शेख जो है ना, ये तो वसीला है खाली, असल में तो अल्लाह है, ठीक है। तो फला काशिफ लहू इल्ला हू, व इन यमसस्का बिखैरिन वहुव अला कुल्ली शैइन कदीर, और अगर तुमको कोई खैर पहुंच गई, खैर ने आके तुम्हें छू लिया, वहुव अला, तो वो हर चीज पर कादिर है, यहाँ पर अल्लाह ताला ने शर के लिए जो है वो दूसरा असलूब इस्तेमाल किया कि कौन है अल्लाह के सिवा जो कि शर पहुंचा सके, और जहां पे खैर की बात आई तो बात अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कादिर है, ठीक है ना। अब असलूब बदलने में क्या हिकमतें होंगी, यकीनन अल्लाह ताला ने उलमा को ये इल्म दिया होगा, उन्होंने इन हिकमतों के बारे में लिखा होगा, वहां पे ऐसे क्यों फरमाया, यहाँ पे ऐसे क्यों फरमाया, हमारे सामने इस वक्त ऐसी तफसीलात नहीं है और ना हमारे पास मौका मिला के इनको जाके जरा देख सकें। वहुवा अल्काहिरु फौक इबादी, और वो अल्काहिर यानी उसी का जोर है, जोर वाला, ठीक है, गालिब बरतर, ठीक है, जिसका के अपर हैंड हो, जबरदस्त जिसको कहते हैं ना, दस्त हाथ को, और जबर मतलब जो चीज ऊपर लगती है, जेर दस्त, जेर जो है वो नीचे लगाया जाता है, पेश और जेर और जबर उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो जेर दस्त वो होगा कि जिसका हाथ नीचे है, जबरदस्त वो होगा जिसका हाथ ऊपर है, जैसे जबर होता है। तो अल्लाह ताला जो है ना वो गालिब है, जबरदस्त है और बरतर है, और उसी का जोर है, उसी की पावर है। वह हुवल काहिरु फौका इबादी, अपने बंदों के ऊपर, के ऊपर है, ही इज नॉट बिलो, ही इज अबव, यानी इन ऑल वेज शेप्स एंड फॉर्म ही इज अबव हिज क्रिएशन एंड हिज सर्वेंट्स, ठीक है ना। इबाद का जो अंग्रेजी में तर्जुमा बनेगा वो सर्वेंट्स बनेगा या स्लेव्स बनेगा, एक्चुअली स्लेव्स, गुलाम उर्दू में उसको कहेंगे। वो मजबूर नहीं है कि गुलाम साहब जो है वो आगे से, वो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने महबूबाना शान अता, जो कल हमारे हजरत सूरह वो तोहा की तफसीर, क्या प्यारी माशाल्लाह तफसीर थी, तो वो फरमा रहे थे कि महबूबाना है, दूसरे लोग जो है वो अल्लाह को राजी करने की मेहनत में लगे हुए हैं, और नबी अलैहिस्सलाम का मामला क्या है कि अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को खुश करने की, नऊज़ बिल्लाह, मेहनत में तो नहीं लगे हुए, कल अब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना वो उनको इतनी परवाह है कि मेरा महबूब राजी हो जाए। क्या है वो अलम नशवाह लका अलम यजिद कहती नहीं, उससे पहले क्या था, फतरदा, वो कि हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला राजी करने के इसमें अभी को राजी कर दे। अच्छा, लेकिन बाकी इसमें किसी के साथ ऐसा नहीं है ना, बाकी सब अल्लाह को राजी करने के फिक्र, और नबी अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला को राजी करने की ही फिक्र में लगे हुए, ऐसा नहीं है कि अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को राजी करने की फिक्र में लगे हुए और नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला नबी अलैहिस्सलाम जो है वो नाउज बिल्ला सिर्फ समझाने के लिए कि नबी अलैहिस्सलाम इज नॉट इंटरेस्टेड, जैसे होता है ना शोहर साहब जो है बीवी को राजी करने में लगे हुए, बीवी साहब नफरे दिखा रही है, राइट, नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा मामला नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो हु इज नॉट इंटरेस्टेड कि अल्लाह ताला उनको, भाई अल्लाह ताला भी राजी कर रहे हैं और नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह को राजी करने में लगे हुए हैं, मुस्तकिल अल्लाह सबसे ज्यादा अल्लाह को राजी करने में नबी अलैहिस्सलाम ही लगे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन उधर से अल्लाह भी रेसिप्रोकेट कर रहा है इस बात को, या अल्लाह ताला, बल्कि असल हकीकत तो ये है वला सौफ युअती रब्बुका फतरदा, ठीक है, लेकिन असल हकीकत तो ये है कि पहले पहल जो है ना वो अल्लाह ही की तरफ से होती है, पहल अल्लाह ही की तरफ से होती है, और बंदे की तरफ से तो उसका जो है ना वो एक रिएक्शन हो रहा होता है, वो भी अल्लाह ही की तरफ से होता है कि अल्लाह ताला ना चाहे तो बंदा भी रिएक्ट ना कर सके। हमारे हजरत उसके लिए वो वाली आयत इस्तेमाल फरमाते हैं, वो युहिब्बुहुम वो युहिब्बूनहु वो युहिब्बुहुम, कि अल्लाह ने उनसे मोहब्बत करी फिर फरमाया कि उन्होंने अल्लाह से मोहब्बत करी, तो पहले अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तब वो बंदा जो है ना वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, तो पहल तो अल्लाह ही की तरफ से होती है भाई, आखिर को खालिक अल्लाह है, कोई और तो खालिक नहीं है ना, तो जिसने तख्लीक किया तो वही पहल करेगा ना, मखलूक तो पहल नहीं कर सकती, ठीक है। वहुवल काहिरु फौका इबादी वहुवल हकीमुल खबीर, और वही अल हकीम है, सारी हिकमत वाला और सारी खबरें रखने वाला अल्लाह ही है, ठीक है। क्या तौहीद है, क्या तौहीद है। कुल अय्यु शयइन अकबरु शहादा, कौन सी चीज है, कह दीजिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि ज्यादा बड़ी है शहादत के तौर पर, ठीक है, गवाही देने के लिए कौन सी बड़ी गवाही हो सकती है। कुल अल्लाह, अल्लाह है सबसे बड़ा गवाह, सबसे बड़ी शहादत देने वाला तो अल्लाह खुद है, ठीक है। शहीदुम बैनी व बैनकुम, वो शहीद है मेरे और तुम्हारे दरमियान, बैना का लफ्ज भी दरमियान में, और किसके दरमियान? याए मुतकल्लिम और जो मुखातब की जमा है, जमा मुखातब की जो जमीन है, कुम। तो मेरे और तुम सब के दरमियान जो गवाह है ना, जो शहीद है ना, जो इस्टैब्लिश करने वाला है ट्रूथ को, गवाह क्या करता है? जब गवाही देता है कि हाँ मैंने देखा था, इस काम को होते हुए देखा था, तो वो बात को कंफर्म कर देता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना, वो कंफर्म करने वाले हैं मेरे और तुम्हारे। देखें ये कब होता है, जबकि दुनियावी एतबार से किसी को कोई गवाह नहीं मिल रहा होता ना, कोई जो है वो सपोर्ट करने वाला नहीं मिल रहा होता, तो कहते हैं कि अल्लाह तो जानते हैं ना कि ये ऐसे ही है मामला। ठीक है, तो बेशक चंद सहाबा नबी अलैहि सलाम के ऊपर ईमान ला के ला चुके थे, और वो, लेकिन ये जब जब नबी अलैहि सलाम कुफार के साथ कर रहे होते थे ना ये सारे की सारी कॉन्वर्सेशन, तो उस वक्त वो सहाबा मौजूद नहीं होते थे सपोर्ट करने के लिए। ये मक्की दौर है, ये मक्की दौर है कि जहाँ पे ये सहाबा मौजूद नहीं होते थे, वो छुप छुप करके लोग अपना अपना अलग अलग जो है वो सबका निजाम चल रहा होता था, और नबी अलैहिस्सलाम से तन्हाई में मिलते थे। काफिरों के सामने तो वो आकर के एक्सपोज ही नहीं कर रहे होते थे अपने ईमान को। ठीक है, तो अब नबी अलैहिस्सलाम और काफिरों के दरमियान कौन शहीद है? कोई बंदा तो शहीद नहीं है, अल्लाह शहीद है, अल्लाह ताला गवाह है। बैनी व बैनकुम व ऊहिया इलैया हादल कुरआनु लिउंदिरकुम बिही व मन बलग, और उतरा है यानी वही के तौर पर उतरा है, वही की शक्ल में वो उतरा है, इलैया मेरे ऊपर, हादल कुरआन ये कुरआन किस लिए उतरा है? लिउंदिरकुम बिही, ताकि मैं डराऊं तुमको उससे, नजीर नजर डराना, ये वाली जाल वाली नजर है, वॉ वाली नहीं है, ताकि मैं तुम्हें डराऊं उससे, क्योंकि तुम हरकतें ही ऐसी कर रहे हो कि मैं तुम्हें उसके ऊपर क्या खुशखबरी दूं, राइट? क्या तुम्हें मिठाई खिलाऊं, क्या तुम्हें जो है वो आगे की बशारतें दूं कि तुम्हें जो है ना वो बड़े ये वाले, तुमने तुमने आ, आ, तुम जो है ना वो हाजियों को पानी बड़ा जबरदस्त पिलाते हो, जमजम पिलाते हो, तो इस वजह से मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि तुम्हें तो जन्नत मिलेगी जमजम पिलाने की। ये लोग पिलाते थे जमजम, ये लोग जो है वो गरीबों को कपड़ा भी पहना दिया करते थे, ये बैतुल्ला की जो है वो सफाई सुथराई का भी काम किया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ऐसा भी तो कर सकते थे ना, यानी समझाने के लिए जैसे जैसे, जैसे हमने अजम्पशंस करी भी, कोई बात नहीं, हमारा ईमान अगर नहीं भी है, हम जो है वो काफिराना कलमे कह करके ईमान से खारिज भी हो चुके हैं, और हम जो है ना वो कुरान के ऊपर आधा ईमान रखते हैं, बाकी आधे कुरान के ऊपर हम ईमान नहीं रखते, लेकिन वी आर सो नाइस टू ईच अदर एंड वी आर सो वेल कल्चर्ड, और हमने जो है वो इतनी और भी तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं, और हम खाना भी खिला देते हैं, और इफ्तारी भी बांट देते हैं, और ये भी कर देते हैं, तो इस वजह से ना हमें जन्नत तो मिल ही जाएगी ना, तो हमें खुशखबरी भी दे दिया करें आप कभी कभी आकर के ना। आप खामखई जो है वो रोज डराने की बातें करते रहते हैं, ठीक है, अब खामखई डराने की बातें करते रहते हैं, आप कभी खुशखबरियां भी दे दें। हमने कितना अच्छा तालीम हासिल करी है अपनी बेटियों को और बेटों को भी, लेकिन बेटियों को हमने और ज्यादा तालीम यानी नाफे से, तालीम नाफे के जेवर से हमने अपनी बेटियों को कितना अच्छा आरास्ता किया हुआ है, तो आप हमें जो है नहीं, तालीम निस्वानी बात समझें, तालीम नाफे के जेवर से हमने यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में भेज भेज करके अपनी बेटियों को कितना अच्छा आरास्ता किया है। हम कहें तालीम के जेवर से आरास्ता करना, ये नहीं पूछते कि तालीम नाफे है कि तालीम वार है, फायदामंद थी उनकी जरूरत थी उनको आगे की जिंदगी में, और आगे की जिंदगी में उससे उनको फायदा होना था कि नहीं, नहीं बस तालीम है, चाहे जैसी भी हो है, चाहे जो है वो अमेरिका की बनाई हुई तालीम हो, चाहे जो है वो इसराइल की बनाई हुई तालीम हो, चाहे जो है वो किसी की भी बनाई हुई तालीम हो, बेशक नबी अलैहि सलाम की ना भी बनाई हुई हो तो कोई बात नहीं, तो तालीम का जेवर, ठीक है ना, जेवर है तालीम, कौन सी तालीम भाई, फायदेमंद तालीम थी नुकसानदेह तालीम थी? मिसाल के तौर पर आइस का नशा है, ये जो आइस है ये भी तो एक केमिकल सब्सटेंस है ना, तो आइस बनाने की भी तो तालीम हो सकती है ना, ये बगैर तालीम के तो लोग आइस नहीं बना सकते, जिसके बारे में आज आपको वो वीडियोस भेजेंगे, ऑडियोज भेजेंगे, और भी बहुत सारा मटेरियल है उसके ऊपर, वो तो हमने आपको भेजा नहीं है, वो तो सिर्फ दो क्लिप्स भेजे हैं, उसके ऊपर सपोर्टिंग मटेरियल और भी बहुत ज्यादा है, मौजूद है सारा का सारा, बल्कि अखबारों में भी छप चुका है कि क्या हो रहा है आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर और आपके वर्क प्लेसेस के अंदर। आपके कॉल सेंटर्स के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही नहीं है कि एक साहब गए उनका इंटरव्यू सुना और आकर के थक करके हमें आगे फॉरवर्ड कर दिया, ऐसा नहीं है। तो ये तालीम है ना, तालीम तो फिर मनशियात बनाने की भी तालीम तालीम ही होती है ना, वो भी तो इल्म ही होता है ना, जहालत तो नहीं होती, वो भी तो इल्म ही होता है। लेकिन क्या फायदेमंद तालीम है या नुकसानदेह तालीम? तो भाई तालीम में आप क्लासिफाई तो करें ना, कौन सी फायदेमंद तालीम है, कौन सी जरूरी तालीम है और कौन सी बेफायदा और गैर जरूरी तालीम है। नहीं, अंधाधुंध जो है वो भागे चले जा रहे हैं अपने दुश्मनों के पीछे, अपने दुश्मनों के बताए हुए जो है वो निजाम के पीछे, ठीक है, अंधाधुंध भागे चले जा रहे हैं। फिर ये सब कुछ तो फिर होना ही था ना, ये तो पहले भी मौजूद था लेकिन बढ़ना ही था इन सब चीजों ने, तो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है जी। इन्होंने लिखा कि मेडिकल कॉलेज में जो लड़की फर्स्ट आती थी, इनके मेडिकल कॉलेज में जो लड़की फर्स्ट आती थी वो प्रिंसिपल के साथ लाजमन पार्टी में जाती थी। तो प्रिंसिपल जो है वो फीमेल थी या मेल थी? वैसे तो फीमेल भी हैं तो भी हालात तो फीमेल वाले भी खराब है वैसे, लेकिन मोस्ट लाइकली मेल थे ना वो प्रिंसिपल, तो वो पार्टी में जाती थी, मेल थे जिन्होंने बता दिया, मेल थे वो प्रिंसिपल, तो वो पार्टी अटेंड करती थी प्रिंसिपल के साथ। फिर मेडिकल कॉलेज में तो फर्स्ट उसने आना ही था, और पार्टी में तो फिर वो कुरान मजीद की तलावत ही सुनती होगी जाहिर सी बात है, और नात की पार्टी होती होगी वो तो, है ना, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत वाली पार्टियां होती होंगी जिसमें वो प्रिंसिपल के साथ जाती थी मेडिकल कॉलेज की लड़की। कराची की बात हो रही है ये, ठीक है, बिनोरी टाउन भी कराची में ही है, यानी ये नहीं कि कोई ऐसा जहाँ पे कि वो ये कोई वो शराब कबाब वाले शहर की बातें नहीं हो रही कि जहाँ पर जो है वो कैसीनोज होते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो है वो सिर्फ जुए का कारोबार होता है, वहां पर जो है वो सिर्फ काफिर रहते हैं, नहीं, कराची जहाँ पे के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा जो है ना वो इल्म की खिदमत करने वाले दारुलूम मौजूद हैं उस शहर के अंदर ये सब कुछ होता है, ठीक है। और हमारी हमारी औलादें भी वहीं जा रही हैं और बड़े शौक से और बड़े जोश व खरोश के साथ तालीम के जेवर से आरास्ता करने के नाम पर जो है वो हम उनको वहां पे भेजते हैं, ठीक है ना। खुद अगर बच भी जाती है ना वो आइस के नशे से, लेकिन आइस के नशे वाली के साथ तो उठना बैठना उसका दिन भर चल रहा होता है। आइस के नशे के करने के बाद जो हरकतें करने वाली लड़कियां होती हैं जो कि आइस के नशे के बाद लाजमन करनी पड़ जाती हैं वो हरकतें, तो उनके साथ हमारी बेटियां उठती बैठती हैं, तो क्या हो गया, बुरी बुरी सोबत। ये तो खाली मौलवी साहब जो है वो इज्तिमा में हम सुनते हैं ये वाली बातें, आजकल जो है वो तरावी वो लाइव बयान आ रहा है उसमें हम ये बातें सुनेंगे, बुरी सोबत अच्छी चीज नहीं होती है, बुरी सोबत से बचना चाहिए, बचाना चाहिए, लेकिन बस उसके बाद कॉलेज में को थोड़ी बुरी सोबत का कोई असर होता है, बुरी सोबत का असर तो पता नहीं कहाँ पर होता होगा, वो तो बस ऐसी किताबों में है, वो इज्तिमा में हम सुनते हैं ये सारी बातें और बस वहीं पे दफन करके आ जाते हैं। कॉलेज वॉलेज में ये सारी चीजें रियलिटी नहीं है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है हमारी जिंदगी के साथ, ठीक है, आपस का हया बरकरार नहीं है क्या मतलब। हाँ वही आइस का जो है ना, फिर उसके बाद बंदा इस काबिल बन जाता है कि फिर उसके बाद वो अपने आप को हर चीज के लिए तैयार पाता है, इसीलिए करती भी है ना नशे ताकि कमाई हो सके, क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में कॉलेज की फीसें और फिर उसके बाद जो है वो यानी मेकअप की का खर्चा और खाने पीने का, मेकअप तो चले ऐसे ही कह दिया, खाने पीने का खर्चा आजकल जो है वो उठाना आसान काम है, तो कहाँ से ये कमाई किधर से आएगी, तो कमाई के फिर रास्ते शैतान ने खोले हुए, आइस कर नशा करो उस काबिल बनो और फिर जाके कमाई करो, जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है नेमतें दी हैं उन नेमतों का इस्तेमाल करके कमाई करो, यही वो साहब बताना चाह रहे थे जिसमें उनको शर्म आ रही थी बताने की, ठीक है, करने में शर्म नहीं आती बताने में शर्म आती है, ठीक है। वेपिंग एंड टोबैको शॉप्स कैन बी सीन थ्रू आउट लाहौर एंड इस्लामाबाद एंड कराची, आपने देखा नहीं होगा कराची में जाकर के, ठीक है, हमारे एक दोस्त ने जो है वो पता नहीं उनको क्या सूझी, क्लास में तो शायद वो नहीं होंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो होते हैं ना गूगल वगैरह के जो है वो स्टैट्स होते हैं कि कौन सी वाली वेबसाइट को सबसे ज्यादा विजिट किया जा रहा है और कौन सी जो है वो सर्च इंजन जो है वो उसमें कौन सी चीजों को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, तो उन्होंने चंद महीनों पहले मुझे भेज दिया, मुझे तो पता भी नहीं था सारी चीजें कि वेपिंग क्या चीज होती है और वेपिंग के अंदर क्या चीज हो सकती है, मुझे तो मालूम भी नहीं था। उन्होंने भेजा कि ये इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो हिट्स लग रहे हैं ना वो है वेपिंग के ऊपर और टोबैको के ऊपर, पाकिस्तान से सबसे ज्यादा इंटरनेट के ऊपर इन्हीं चीजों को सर्च किया जा रहा है और इन्हीं के बारे में जो है वो कहाँ से दस्तियाब है ये सारी चीजें, ठीक है। उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि मैं समझा पता नहीं ये कोई नई किस्म का जो है ना वो टोबैको आ गया है या क्या आ गया है, वो तो अब पता चल रहा है कि वेपिंग और आइस का आपस में क्या ताल्लुक है। और जैसे कि उन साहब ने बताया कि इसमें अब वो एज ब्रैकेट जो है ना वो बहुत नीचे आ गया है, 13 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे ये वाली हरकतें कर रहे हैं स्कूलों के अंदर। बल्कि हमें तो किसी ने इस्लामिक स्कूल का भी पता है, सो कॉल्ड इस्लामिक स्कूल, असल में वो बस मुस्लिम स्कूल होता है, वहां पे भी इसी किस्म का माहौल, वहां पे भी आइस का नशा जो है वो कर रहे हैं। तो फिर दूसरे स्कूलों का क्या हाल होगा उसको आप कयास कर लें इसके ऊपर। तालीम का जेवर करें और तालीम के जेवर से आरास्ता अपने आप को भी अपनी औलादों को भी। बहरहाल ये आप नहीं मानते इन बातों को, अल्लाह ताला है ना शहीद, अल्लाह ताला देखने वाला है। कुल अय्यु शयइन अकबरु शहादा, कुल अल्लाह, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। शहीदुम बैनी व बैनकुम व ऊहिया इलैया हादल कुरआनु लिउनज़िरकुम बिही, ताकि डराऊं मैं तुम्हें इससे, जो तुम्हारी हरकतें हैं वो सिर्फ डराने की काबिल है, कोई बशारत के काबिल नहीं है तुम्हारी हरकतें और हमारी हरकतें इस वक्त। वह मन बलगा, और जिसको ये बात पहुंचे, इन बलगा पहुंचना पहुंचाना, उसने पहुंचाई, जिसने उसको पहुंचाई इन बातें, या आगे थोड़ा सा तफसील इंशाल्लाह इसको देखेंगे, थोड़ा सा ये इतना क्लियर नहीं है। इन्नकुम लतशहदूना, क्या तुम गवाही देते हो, अन्ना मअल्लाहि आलिहतन उखरा, कि अल्लाह के साथ और भी आलिहा हैं, और भी जो है माबूद है जिनकी इबादत की जाए, जो इबादत करने के काबिल हो, कि अल्लाह के अलावा और भी हैं। उखरा, ठीक है, उखरा मतलब और, अदर्स। कुल ला अशहदु, कह दीजिए नहीं मैं गवाही नहीं दूंगा ऐसी कोई भी, कि अल्लाह के सिवा कोई भी, कोई और भी हैं इबादत के लायक, कोई और भी हैं कि जिनकी अताअत की जाए अल्लाह की अताअत को छोड़ करके, नहीं मैं ऐसी गवाही नहीं दूंगा। कुल कह दीजिए, इन्नमा हुआ इलाहुन वाहिद, कि बेशक वो तो सिवाय इसके नहीं, इन नमा का असल तर्जुमा तो बनता है सिवाय इसके नहीं के, यानी देर इज नो अदर पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट दिस विच इज हुआ इलाहुन वाहिद, कि वही वाहिद अकेला माबूद है, अकेला इबादत के लायक, सिर्फ और सिर्फ वही है, कोई और इबादत के लायक नहीं। वह इन्ननी बरी मिम्मा तुशरिकून, और बेशक मैं तो बेजार हूं, बरी हूं, जैसे कहते हैं ना किसी को जुर्म से बरी कर दिया गया, यानी ही डिड नॉट कमिट दिस क्राइम, तो उसको बरी कर दिया गया, ठीक है, उसने ये जुर्म नहीं किया था। तो इसी मफहूम के अंदर कि मैं तो बरी हूं इस गुनाह से, मैंने ये गुनाह नहीं किया ना मैं करूंगा, शिर्क करने वाला गुनाह, जो तुम ये गुनाह करते हो ना शिर्क करने वाला अल्लाह ताला के साथ, मैं इससे बरी हूं, आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम, आई विल नेवर कमिट दिस क्राइम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, आगे अल्लाह ताला क्या अजीब बात फरमाते हैं, यानी ये मुशरिकीन की बातें हो रही है ना, ये जो जो मुशरिकीन के टाइटल में जो लोग आते हैं, ये वो मक्का मुकरमा वाले, मदीना मुनव्वरा वाले, ईमान लाने से पहले यसरब वाले जिनको कहा जाना चाहिए, ठीक है ना, ये सारे बुतों को लकड़ी के, पत्थर के और अजीब गरीब किस्म की शक्लो सूरत के जो है बुत बना करके, ठीक है ना, ये क्या करते थे। आज के एतबार से अगर मक्का मुकरमा कि मुशरिकीन को इस्लामी मुआशरे के अंदर ढूंढा जाए, ठीक है, तो ये नहीं कह रहे कि नाउज बिल्ला हम ये नहीं कह रहे कि ये लोग काफिर हैं और ये लोग ईमान से खारिज हैं, लेकिन एक होता है ना सिमिलैरिटी भी तो बनती है ना, ऊपर जा करके कनेक्शन भी तो बनता है ना, जैसे मिसाल के तौर पर हम में से कोई जो है ना वो मुनाफिकत करे, ठीक है, जब बात करे झूठ बोले, जब अमानत रखाई जाए तो जो है वो खयानत करे, और जब जो है ना वो लड़ाई झगड़े का मौका है तो गंदी गंदी गालियां और जो है बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दे, और जब वादा करने का मौका आए तो जो है वादा के खिलाफ ही कर दे, वादा खिलाफ ही करे, तो क्या कहा जाएगा, मुनाफिक है भाई, ठीक है ना। तो अब ये जो मुनाफिक है तो इससे ये काफिर हो गया, नहीं, ये गुनाह के काम है और बहुत बड़े बड़े गुनाहों के काम है, लेकिन इससे ये काफिर नहीं हो गया, लेकिन इसकी निस्बत जो है वो मुनाफिक से बन गई, जो कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने की मुनाफिक, ठीक है, वो काफिर भी थे और उनके अंदर ये सारी जो है ना वो रूहानी अमराज भी थे, ये सारी बीमारियां भी थी, ठीक है ना। एक मुसलमान भी यही वाली हरकतें कर रहा है, लेकिन चूंकि वो नबी अलैहिस्सलाम के आखिरी रसूल होने की गवाही दे रहा है और इनकार नहीं कर रहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित जो कतई बातें हैं उनका इनकार नहीं कर रहा, इस वजह से वो काफिर नहीं है, लेकिन गुनाह तो वे सारे कर रहा है। तो अब इसकी निस्बत ऊपर जाकर के किससे बनेगी, उन मुनाफिकीन से बनेगी, लेकिन अगरचे के मुनाफिक है नहीं। उसी तरीके से इस मॉडल को सामने रखते हुए ये जो मुशरिकीन मक्का थे, ठीक है, तो इनकी जो हरकतें थीं इनसे मुमासलत जो है वो इस वक्त के इस्लामी मुआशरे के अंदर किस तबके की बनती है, दीनदार वो भी थे, हम दुनियादारों की बात ही नहीं कर रहे, ना वो दुनियादार थे ना आज के हम दुनियादार मुसलमानों की बात कर रहे हैं, दीनदार मुसलमानों में किस तबके की ऊपर जाकर के उनके साथ कनेक्शन बनती है। आप में से कोई जवाब देना चाहे तो दे दीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो है ना वो दूसरे तबके की बात कर रहे हैं, पहले तबके की बात जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हुई, दूसरे तबके की बात कर रहे हैं, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग कि जिनको हमने किताब दी, ठीक है, यानी जो अहले किताब कहलाते हैं, जो कि ये यहूद और नसारा का भी नाम जिनके लिए इस्तेमाल होता है, तौरात और इंजील वाले लोग, ठीक है, आतैना हुमुल किताबा, जिनको के हमने इधर सेलेक्ट सेलेक्शन की कि भी इनके ऊपर जो है ना उलूम जो है वो इनके ऊपर नाजिल किए जाए, बहुत ही, यानी किसी का जवाब नहीं आया सिवाय एक जो है वो बंदों में जवाब आया, ठीक है, वो भी जो है वो मैं उसे एग्री नहीं करता, बरेलवी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अहले बिदत का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, बिदती या अहले बिदत, ठीक है, जो कि बिदतों के अंदर पड़े हैं, उनमें अकीदे की भी बिदतें शामिल हैं, उनके अंदर अमाल की भी बिदतें शामिल हैं, ठीक है, तो इनकी जो निस्बत है ऊपर जाकर के वो मुशरिकीन मक्का से बनती है, तस्वीर रखने वाले, ये क्या चीज होगी, तस्वीर तो आजकल कोई ऐसा नहीं है जिसके पास तस्वीर ना हो, नहीं, तस्वीर मतलब वो फिर एक अलग डिस्कशन हो जाती है, अहले बिदत, ठीक है। अच्छा, दीन में बिदत है, यानी दीनदार तो हैं लेकिन दीन में, यानी ऐसी अजीब गरीब किस्म की जो है वो तमाशे और जो है और इल्म भी नहीं होता इनके पास। अच्छा, ज्यादा इनकी रेलेवेंट जो निस्बत बनती है ना ऊपर, जो निस्बत की रेलेवेंस जो है वो क्या है कि इनके पास इल्म नहीं होता, बहुत कम होता है इनके पास, होता है लेकिन बहुत कम इल्म होता है, ठीक है ना, इनके जो उलमा होते हैं उनके पास तो खैर बहुत इल्म होता है लेकिन अवाम उन्नास के पास बिल्कुल भी इल्म नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसे ये मामला है, ठीक है, वही मुशरिकीन मक्का का मामला कि उनके पास जो है ना जो अवाम उन्नास थे वो बिल्कुल ही यानी फारस थे इल्म से। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी क्या है, अल्लज़ीना आतैनाहुम किताब, कि जिनको किताबों का इल्म दिया गया, उनका क्या मामला था, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, वो आपको यानी नबी अलैहिस्सलाम को ऐसे पहचानते थे जैसे कि वो अपने बेटों को पहचानते थे, क्या मतलब कि उनको थियोरेटिकल इल्म दिया गया था नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, ये जो मुशरिकीन मक्का थे और जो मदीना मुनव्वरा के भी लोग थे, क्योंकि मदीना मुनव्वरा एक तो बहुत दूर नहीं था मक्का मुकरमा से, ठीक है ना, और दूसरा ये कि इन दोनों के दरमियान बड़ी आमदोरफ्त चलती रहती थी मक्का मदीना के दरमियान, राइट, उस जमाने में भी आमदोरफ्त चलती रहती थी, इनकी फैमिलीज जो थी ना वो भी कि फलाने का फलाना चाचा जो है वो इधर रहता है तो मामा उधर रहता है, तो फलाने का ये इधर रहता है तो उधर, नबी अलैहिस्सलाम के अपनी खानदान ऐसे ही था, ननियाल जो था वो मदीना मुनव्वरा में था, ददियाल जो था वो मक्का मुकरमा में था, ठीक है ना, यानी इनकी फैमिली टाइज भी थी मक्का मुकरमा और यसरब के लोगों में, बाद में मदीना तैयबा तो बाद में बना ना वो, ठीक है, तो इन लोगों का मामला यही था कि ये नबी अलैहिस्सलाम को पर्सनली जानते थे, नबी अलैहिस्सलाम इनके दरमियान, नबी अलैहिस्सलाम के खानदान वाले इनके दरमियान रहते थे, पर्सनली जानने वाले, फिजिकली जानने वाले, ठीक है ना, जबकि जो यहूदों नसारा लोग थे, चाहे वो मदीना के बाहर की तरफ रहने वाले हों, खैबर के रहने वाले हों, या जो है वो शाम के रहने वाले हों, राइट, या ये यमन के रहने वाले हों, या बहरेन के रहने वाले हों, या ओमान के रहने वाले हों, यहूदों नसारा, ये नबी अलैहिस्सलाम को इन्होंने अपने दरमियान फलता हुआ नहीं देखा था, बढ़ता हुआ नहीं देखा था, लेकिन इनके पास किताबों में इतनी तफसील थी, इतनी तफसील थी कि जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम को ये देख रहे हैं। ठीक है, होता है ना, किताब खोलता वरक वरक में तेरा चेहरा दिखाई देता है, तो कभी किताब में इतना डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स होती हैं कि एज इफ यू आर लुकिंग एट द पर्सन। यही मामला जो है वो तौरात और इंजील का था नबी अलैहिस्सलाम के पास, इतना डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो इनका क्या मामला है, ये जानते थे नबी अलैहिस्सलाम का, लेकिन अल्लाह ताला ने वही अल्फाज देखें, अल्लदीन खसरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून, कि जो लोग ये वो लोग हैं जो खसरू अनफुसहुम, इन्होंने अपनी जानों का नुकसान कर दिया, फहुम ला युमिनून, जो के नहीं मान करके दिए, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मान करके दिया, नबी अलैहिस्सलाम की बात को नहीं मान करके, न को माना न की मान। ठीक है, की मानना यानी फलाने की मानना, उसमें ये भी तो बात शामिल है ना कि उसने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं लेकिन उनकी नहीं मानी, उनकी मान करके उनको मान लेते, उर्दू जुबान में है ना इस तरह से, उनकी मान करके उनको मान लेते कि वो अल्लाह का रसूल है, कोई और तो नहीं आएगा ऊपर से, अल्लाह ताला की आवाज तो नहीं आएगी कि हाँ ये मेरे वाकई अल्लाह मेरे रसूल हैं तो मान लो इसकी बात, नहीं, अल्लाह ने तो फैसला किया हुआ कि मैंने नहीं बात करनी है इनसे डायरेक्टली, कयामत के दिन करूंगा, दुनिया में तो करनी नहीं है मैंने। ठीक है ना, तो अब क्या रास्ता रह गया भाई, तुम इनकी बात मानो, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कुछ मौजजे दिखा देंगे, ये और तुम्हें जो है वो कुरान शरीफ वो इनका दिया हुआ, इनको दिया हुआ मेरा मुआवजा है वो पढ़ के तुम्हें सुना देंगे, इनकी बुनियाद पर तुम इनकी बात मान लो, बाकी इनका तुम देख लो, इनको तुमने अखलाक इनके देख लो, सदाकत देख लो, अमानत देख लो, और जो है वो किताबों के अंदर इनकी डिस्क्रिप्शन देख लो, इतनी सारी तो चीजें मैंने तुम्हें दी हुई हैं, तो अब इनकी बात मान लो ना कि उनको मान लो ना अल्लाह के रसूल, लेकिन नहीं मान करके दिया, तो उसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लज़ीन खसिरू अनफुसहुम वहुम ला युमिनून। यही आयत, एग्जैक्टली यही आयत जो है वो हमने पीछे भी पढ़ी थी, कौन सी आयत है, तलाश करते थे, हाँ आयत नंबर 12। ठीक है, ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم وهم لا يؤمنون। ठीक है, तो यानी जो इल्म वाले थे ना, जिनके पास किताबें मौजूद थी, जिन्होंने किताबों को खंगाल खंगाल करके अपने अंदर भी उंडेल लिया था, ये नहीं कि खाली किताबें थी और जो है वो उन्होंने पढ़ा वड़ा कोई नहीं, जो हमारी तरह किताबें रखी हुई हैं बुक शेल्फ के ऊपर पढ़ने वढ़ने का जो है वो शौक ही नहीं, ऐसे नहीं थे, किताबें भी थी, पढ़ते भी थे, जानते भी थे किताबों के अंदर सब कुछ क्या है, और उसकी बुनियाद पर पहचानते भी थे नबी अलैहिस्सलाम को, लेकिन इतना इल्म होने के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ और उन्होंने ना मानने का फैसला कर लिया और उन्होंने अपने आप को खसारे में डाल दिया। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़बन औ कज़्ज़ब बिआयातिही, और कौन ज्यादा जुल्म करने वाला है उससे जिसने के इफ्तरा अल्लाह, अल्लाह के ऊपर झूठ बांधा, इफ्तरा झूठ बांधना, बहतान बांधना, कज़िबन झूठा, औ कज़्ज़ब भी आयाति ही, यानी अल्लाह पे बहतान बांधा या उसने जो है वो अल्लाह की आयात का इनकार कर दिया, दोनों को एक ही चीज भी कहा जा सकता है, अल्लाह ताला ने एम्फेसिस के लिए दोनों तरह से इस बात को बयान फरमा दिया, या दोनों को अलग अलग करके भी समझा जा सकता है कि अल्लाह ताला के लिए झूठ बांधा कि अल्लाह ताला का बेटा है, ठीक है, और अल्लाह ताला की जो बेटियां हैं, किसी ने कहा बेटियां हैं, किसी ने कहा कि ये अल्लाह के रसूल नहीं है, तो ये अल्लाह ताला के लिए झूठ बांधना, और दूसरा क्या कज़्ज़ब भी आया थी कि अल्लाह ताला की जो आयात नबी अलैहिस्सलाम ने सुनाई उनका इन्होंने इनकार कर दिया। नहीं, ये बात ठीक है, तुम बड़े अच्छे हो, तुम बड़े सादिक हो, बड़े अमीन हो, सब कुछ तुम्हारा बहुत अच्छा है, यू आर वेरी नाइस, वी लव यू, और मुशरिकीन मक्का का यही मामला था कि वो कहते थे वी लव यू, राइट, हम तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मसला सारा का सारा ये है कि ये जो आप आयात तिलावत करके हमें कह रहे हैं ना, बता रहे हैं ना, नहीं हम इसको नहीं मान सकते, ठीक है, इनको आप बताना बंद कर दें, वी विल कंटिन्यू टू लव यू, वी विल कंटिन्यू टू लव यू एंड एंड रिस्पेक्ट यू, ठीक है ना, मसला था रखता है आयात का, और हकीकत यही है, उनको नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के साथ कोई मसला नहीं था, वो तो उनके अपने थे, वो तो उनके यानी अबू तालिब अब्दुल मुतलिब की निशानी थे नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो बड़ी सेक्रेट चीज थे नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुआशरे के, है ना, ये तो हमारे बुजुर्ग और वो हमारे बड़े की जो है वो निशानी है, ये उनके सबसे ज्यादा महबूब पोते हैं ये, और उनके जो है वो महबूब तरीन जो बेटे थे अब्दुल्ला, तो उनकी वो दुनिया से चले गए, तो ये तो हमारी मुआशरे की जिम्मेदारी है ये, और ये है वो है, राइट। नबी अलैहिस्सलाम के साथ तो वो बहुत अच्छे थे, मसला किस चीज के साथ था, उस पैगाम के साथ जो नबी अलैहिस्सलाम उनको 40 साल की उम्र पहुंचने के बाद देना शुरू हुए थे, उससे पहले किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था नबी अलैहिस्सलाम के साथ। इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमून, बेशक जुल्म करने वाले ये कामयाब नहीं हो सकते, ये फलाह नहीं पा सकते, ला युफ्लिहुल ज़ालिमून। खुलासे तफसीर में फरमाते हैं कि आप कह दीजिए कि अगर मैं अपने रब का कहना ना मानूं, इन असैतु रब्बी, के इस्लाम व ईमान के हुक्म की तामील ना करूं अगर मैं, या शिर्क में मुबतला हो जाऊं, तो मैं एक बड़े दिन यानी कयामत के अजाब से डरता हूं, क्योंकि हुक्म ना मानने के ऊपर कयामत का अजाब आके रहता है, सिर्फ एक ही रास्ता है उसे बचने का, तौबा कर लेना, वरना नहीं, गुनाह हो गया तौबा कर ले, अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। ये जाहिर है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम हैं, इस्लाम व ईमान के खिलाफ शिर्क व मासियत का सादिर होना आपसे मुमकिन नहीं है, मगर यहाँ सुनाना आम उम्मत को है कि नबी नबी ये मासूम भी अल्लाह के अजाब से खौफ रखते हैं, ठीक है, यानी जो मासूम हैं और जो जिनसे गुनाह का सादिर होना मुमकिन भी नहीं है ना, वो भी डर रहे हैं, तो जो नहीं डर रहे हैं तो वो किस बुनियाद पे नहीं डर रहे, वो सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं डर रहे हैं क्योंकि उन्होंने चाहे एक्सप्लिसिटली चाहे इम्प्लिसिटली आखिरत का इनकार किया हो। एक्सप्लिसिटली इनकार करने वाले वो काफिर की डेफिनेशन में इस दुनिया में भी आ जाते हैं, और इम्प्लिसिटली इनकार करने वाले जिन्होंने एक्सप्लिसिटली इनकार नहीं किया वो काफिर की डेफिनेशन में नहीं आते, लेकिन अल्लाह ताला को तो उनके इनकार का पता होता है, और कयामत के दिन हिसाब किसने करना है, हमने करना है किसी का हिसाब कि भाई हमें तो जो है वो तो ऊपर से नजर आया, हमने तो उसी की बुनियाद पर फैसला करना था कि इसको जन्नत में डालना है कि इसको जहन्नम में डालना है, नहीं हमसे कोई पूछेगा भी नहीं कि फलाने को जन्नत में डालें कि फलाने को जहन्नम में डालें, हमसे किसी ने पूछना भी नहीं है, राइट। तो हमारे जानने ना जानने से क्या होता है, अल्लाह के जानने ना जानने से सब कुछ होता है, क्योंकि अल्लाह ही ने जन्नत और जहन्नम का फैसला करना है, तो अल्लाह को दिल का हाल नहीं पता कि हम जो है वो इम्प्लिसिटली जो है ना वो अपनी हरकतों से भी और अपने जो है वो जो निजी महफिलें होती हैं उनके अंदर भी ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो कि आखिरत का इनकार कर रही हैं, हिसाब किताब का इनकार कर रही हैं, गुनाह के ऊपर कह रहे हैं जी कुछ नहीं होता, कोई नहीं हिसाब किताब होता, राइट। तो क्या कर रहे हो, आखिरत का इनकार कर रहे हो ना कि हिसाब किताब नहीं होता, गुनाह के ऊपर सजा नहीं होती, तो अल्लाह ताला को तो पता ही वाली बात, ठीक है भाई, छुपाना है तो अल्लाह से छुपाए ना, यानी ऐसा खत्म करें अपने जहन से कि अल्लाह को भी पता ना चले, क्योंकि अल्लाह को उसी वक्त पता नहीं चलेगा जब वो चीज मौजूद ही नहीं होगी, नऊज़ बिल्लाह, अल्फाज जो है वो खाली समझाने के लिए कि जो चीज है ही नहीं तो अल्लाह ताला को भी पता है कि ये है ही नहीं, राइट। तो ऐसे बन जाइए ना कि गुनाह को ऐसा मानना छोड़ दीजिए कि कुछ नहीं होता गुनाह करने से, छोड़ दीजिए तो अल्लाह ताला के इल्म में आ जाएगा कि आप जो है वो जन्नत में जाने के काबिल हैं, ठीक है। ये कि भाई अल्लाह को भी पता नहीं कि मेरे दिन में क्या सोचे चल रही हैं, ये तो फिर अल्लाह का इनकार हो गया फिर ना, ये तो अल्लाह को पता नहीं कि मेरे दिन में क्या चल रहा है। अच्छा तो नबी भी जो है ना वो अल्लाह के अजाब से डरते थे, और जो अल्लाह ताला का जितना बड़ा वली, भाई नबी से ज्यादा तो अल्लाह ताला का दोस्त कोई नहीं हो सकता, ठीक है ना, विलायत कुबरा का भी जो सबसे अकबर दर्जा है वो नबी के पास होता है, तो जो अल्लाह ताला का जितना बड़ा वली होता है ना उतना ही ज्यादा वो इस बात से डरता है, उतना ही ज्यादा वो इस बात से डरता है कि अल्लाह ताला ने मुझे शैतान के हवाले कर दिया तो मैं क्या करूंगा, मैं तो फिर अल्लाह ताला का मुकाबला नहीं कर सकता, राइट। मुझसे कोई ऐसा गुनाह हो गया कि मेरी जुबान से कोई ऐसी चीज निकल गई, मेरी हरकतों से कोई ऐसी चीज हो गई, अल्लाह ताला नाराज हो गए, तो फिर तो गया मैं। तो जितना बड़ा वली होता है उतना ही ज्यादा वो डरता है, ठीक है। और जो नहीं डरता फिर आप आसानी से समझ लें। वही नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुनाफिक की क्या हैसियत होती है, क्या हालत होती है, कि गुनाह का पहाड़ भी उसके ऊपर होता है ना, तो वो ऐसा समझता है कि जैसे कि मक्खी जिसका कि वजन फील ही नहीं होता, अगर आपके ऊपर मक्खी बैठे तो आपको कोई दर्द नहीं होता कि वो बड़ी वजन वाली चीज आके मेरे ऊपर बैठ गई है, ठीक है ना। तो मक्खी इज दैट लाइट, ठीक है। तो गुनाह जो है ना वो ऐसी हल्की चीज है जिसका कोई वजन ही फील नहीं होता, जो परेशानी कोई नहीं होती। और जबकि मोमिन का मामला क्या होता है कि उसके लिए गुनाह जो है वो पहाड़ की मानिंद होता है, पहाड़ की मानिंद होता है कि कोई पहाड़ के नीचे दब जाए ना तो फिर वो क्या होगा उसका मामला, तो मर ही जाएगा वैसे तो, लेकिन अगर कोई और इस किस्म की चीज वजन आ गया, चीखे चलाएगा तो ना वो कम से कम परेशान तो होगा ना, वो कम से कम रोए धोएगा तो ना कम से कम। अगर हमें गुनाह का कोई खौफ नहीं है, गुनाह का कोई जो है वो ख्याल नहीं है, तो फिर हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। फिर फरमाया कि वो अजाब ऐसा है कि जिस शख्स ने से उस रोज का अजाब हटा दिया गया उस पर अल्लाह ताला ने बड़ा रहम किया, और ये अजाब का हट जाना और अल्लाह की रहमत का मुतवज्जे हो जाना सरीह कामयाबी, वज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन। इसमें उस रहमत का बयान भी हो गया जिसका जिक्र इससे पहले कतबा अला नफ्से रहमा में आया है, वही एक ही रहमत है भाई, जिस ठीक है। रहमत की मुख्तलिफ जो है वो मैनिफेस्टेशन जरूर हो सकती है कि इस तरीके से अल्लाह की रहमत आई इस तरीके, लेकिन रहमत एक ही अल्लाह ताला की, वो फलाने तरीके से आती है, फलाने तरीके से आती है। तो पीछे भी जिस रहमत का जिक्र हुआ था तो वही फरमा रहे हैं कि इससे पहले कतबा अला नफ्से में, तो उसी रहमत का बयान यहाँ पर भी हो रहा है। और आप सबको ये भी सुना दीजिए कि ए इंसान, अगर तुझको अल्लाह ताला कोई तकलीफ दुनिया या आखिरत में पहुंचा दे तो उसका दूर करने वाला सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं है, वही चाहे तो दूर करें या ना करें, और जल्द करें या देर में करें, अल्लाह ही ने करना है। तो ठीक है, देखें बस आखिरी बात, वैसे तो टाइम खत्म हो गया, हमारी बुरी आदत के टाइम खत्म होने के बाद आखिरी बात शुरू करते हैं इबादत के साथ, क्या करें और इबादत की मांग सकते हैं आपसे, कि ये जो दुआ है ना दुआ, भाई मुसीबत में तो सारे ही मुब्तला हैं, इल्ला ये कि कोई अल्लाह ताला से ऐसा राजी हो जाए और ऐसा नेमतों का ऊपर शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला उसके दिल को मुतमईन कर दे, अल्लाह बिज़िक्र अल्लाह तुतमइन्नुल क़ुलूब, राइट, वो तो इत्मीनान में आ गया। लेकिन ऐसे तो फिर आपको पता है कितने हैं हम में से, तो भाई मुसीबत तो फिर हर एक के ऊपर है, बल्कि उनके ऊपर भी मुसीबत होती है लेकिन वो मुसीबत में भी मुतमईन रहते हैं, मुसीबत तो हर एक के ऊपर है। अब इस मुसीबत को हटाने के लिए हम लगे हुए हैं, कोशिशों में लगे हुए हैं और तदबीरों में लगे हुए हैं, और फलाने से जो है वो बात कर रहे हैं, फलाने से जो है वो उसको हटाने की कोशिशें कर रहे हैं, और ये अकल शरीफ इस्तेमाल कर रहे हैं, आला तालीम का जेवर जो है वो हासिल करने की कोशिशें कर रहे हैं, अपनी औलाद को भी आला तालीम का जेवर दिला रहे हैं ताकि मुसीबतें खत्म हो जाएं। अब उसके ऊपर ना आते हैं कोई मौली साहब टाइप के या मौलाना साहिबा टाइप की जो है वो कोई आती हैं, कहती हैं दुआ करें आप, दुआ, असल चीज तो दुआ है, ठीक है, असल चीज तो दुआ है, दुआ करें अल्लाह ताला से, दुआ करें, है ना। तो हम पहले तो होता है यार क्या मुसीबत है, ये कोई करने की चीज बताओ यार, ये दुआ कोई कोई टेंजिबल चीज तो नहीं है। अल्लाह ताला, अब वो अब ये बात तो हमारी जुबान पे चढ़ गई है ना, अल्लाह ताला ने अकल दी है, ये और बात है कि हम असल में अल्लाह ताला की दी हुई अकल नहीं समझ रहे होते हैं, मेरे पास अकल मौजूद है, मुहावरतन हम कहते हैं अल्लाह ताला ने अकल दी है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने अकल दी है ना, तो अकल भी तो इस्तेमाल करनी चाहिए ना, और अल्लाह ताला ने जो है वो इल्म दिया है तो इल्म के जरिए से अपनी परेशानी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए ना, और अल्लाह ताला ने असबाब दिए हैं तो असबाब को भी तो इस्तेमाल करके जो है परेशानी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए ना। तो सबसे पहले तो हम दुआ को जो है ना वो साइड पे कर देते हैं कि नहीं, हमें अभी तो देयर इज सो मच वी कैन डू, ठीक है। तो दुआ तो जो है ना ये तो कोई मतलब एक इनटेंजिबल नॉन टेंजिबल नॉन किस्म की चीज है, वो हम बाद में देख लेंगे उसको अगर टाइम मिला तो, ठीक है ना। या फिर ये कि दूसरी सूरत ये होती है कि अकल लड़ा लड़ा करके थक जाते हैं, और कोशिशें कर करके जो है वो जब नाकाम हो जाते हैं तो फिर हम जो है ना वो दुआ की तरफ हाँ भाई, वो मौलाना साहब ने कहा था दुआ करना। ओहो, वो भी तो एक, चलो मैं ट्राई करता हूँ, मौलाना साहब ने कहा था, ठीक है। लेकिन जो हम दुआ करते हैं ना, वो दुआ जो होती है ना, चूंकि हमारा असल में तो ये एटीट्यूड बना हुआ है, असल में हमारा जहन जो ये बना हुआ है, तो इस वजह से जो हम दुआ करते हैं ना, वो ऐसी दुआ होती है कि जिसके ऊपर अल्लाह ताला राजी होने के बजाय लगता है कि शायद और नाराज हो जाता हो, और नाराज हो जाता हो, ठीक है ना। क्योंकि अल्लाह ताला का मामला ये है, अभी थोड़ी देर पहले फिर वही बात हुई थी, दोबारा से करनी पड़ रही है। अल्लाह ताला का मामला ये है कि वो जाहिर को देख करके खुश नहीं हो जाता, ठीक है ना, उसको जो है वो अंदर के हालात पता है। अब मिसाल के तौर पर कोई शख्स आपके सामने आए और आपसे जो है ना वो माफी मांगना शुरू कर दे, ठीक है, मैंने बहुत गलत किया, मैंने आपका जो है हक अदा नहीं किया, मैंने आपकी इज्जत नहीं की, आप उसको कहें हाँ यार ये मेरे से माफी मांग रहा है, तो चलो मैं उसको माफ कर देता हूँ, देखो कितने रस्वे बहा रहा है, रोना कर रो धो रहा है, तो चलो मैं उसको माफ कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर जो है ना इसी शख्स ने जो कि आके आपसे माफी मांग रहा है, अगर इसी शख्स की कोई वीडियो जो है ना वो आपने एक दिन पहले देखी हो, ठीक है ना, कि ये अपने घर में बैठ करके जो है ना वो आपको गालियां दे रहा था और आपका मजाक उड़ा रहा था और आपके साथ जो है ना वो बहुत ही अजीब और गरीब किस्म की आपके बारे में उसके नजरियात हैं, तो अब जो है ना वो आकर के आपसे माफी मांग रहा है, टस में बहा रहा है, तो आप उस, या तो उसको मारना शुरू कर देंगे, या आप उसको जो है वो कहेंगे दफा हो जाओ तुम यहां से, मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं, या अगर बहुत मजबूर होंगे तो ऊपर ऊपर से जो है वो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से जो है ना वो आप शदीद गुस्सा होंगे उसको, ये देखो कैसा मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट, कैसा जो है ना वो ये मुझे पागल समझता है या मुझे पता नहीं क्या समझता है, ये आगे आकर के मेरे सामने ये क्या कर रहा है, और देखो पीछे से इसकी असल हकीकत क्या है, ठीक है ना। तो अब ना ना अब आप उसको कैसे माफ कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो हकीकत का पता है ना, लेकिन हमें हकीकत का पता कैसे चला कि भाई किसी ने वीडियो कैमरा जो है ना वो ऑन किया हुआ था उसके घर के अंदर, आजकल तो छुप करके वीडियो कैमरे लगा देते हैं, हम जाते हैं वो बहुत बड़े इसके ऊपर न्यूज मौजूद है कि एयरबीएनबी से जो है वो हाउस रेंट किया और वो हाउस के अंदर जो है ना उन्होंने ऐसी जगहों पे हिडन कैमरास लगाए हुए थे जहां पे लोग अपने कपड़े चेंज करते हैं। ये मैं तफसील आपको इस वजह से बता दूं ताकि आप ध्यान रखें इन बातों का, पैरानॉइड और दीवाने ना हो जाए, लेकिन बातों का ध्यान तो रखें ना कम से कम, समझते हैं कि नहीं जी दुनिया तो बड़ी फरिश्ता है, इस मामले में बड़ी दुनिया फरिश्ता बन जाती है और कोई हम परवाह नहीं करते किसी मसले की। बहरहाल तो एयरबीएनबी ने जो है वो उन्होंने जो है वो अपने घरों के अंदर कैमरे लगाए हुए होते हैं ताकि फिर वो पिक्चर बनाए वीडियोज बनाए आपकी और उसके बाद फिर वो मजे करें उसके, इंटरनेट पे भी वायरल कर देते हैं फिर इस तरह के वीडियोज को, ठीक है, तो देख के क्या करें सारे काम। बहरहाल तो वो तो आपको इस वजह से पता चल गया ना उस शख्स की हकीकत का, क्योंकि कोई हिडन कैमरा लगा हुआ था, या ये होता है लोग फोन करके जो है ना फोन करते हैं फिर उसके बाद फोन को बंद करना भूल जाते हैं, किसी वजह से फोन बंद नहीं किया, अब जो है वो सारी आवाजें आ रही हैं जो वो आपके बारे में हकीकत, राइट, तो अब आप तो उसको नहीं माफ कर सकते। तो भाई ये तो हमारा मामला है, अल्लाह का मामला क्या है कि अल्लाह ताला को तो किसी हिडन कैमरे की भी जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला को तो किसी की इस गलती की भी जरूरत नहीं है कि वो फोन बंद करना भूल गया इस वजह से जो है वो अल्लाह ताला को पता चल गया कि इसकी हकीकत क्या है, तो अल्लाह ताला तो फिर अब अल्लाह से जाकर के जो दुआ कर रहे हैं, तो वो दुआ ऐसी कि हमारे दिल का हाल ये है कि वी डोंट रियली फील कि अल्लाह इज, नाउज बिल्ला, अल्लाह इज केपेबल ऑफ सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम, वी डोंट रियली फील दैट अल्लाह इज इवन रियल टू बिगिन विद, समझ रहे हैं, वी डोंट इवन फील कि अल्लाह इज देयर टू बिगिन विद, कि अल्लाह है जो के मसाइल को हल करना अल्लाह ही के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं था, मेरी अकल और मेरी जो तदाबीर जो है उससे मसाइल को हल नहीं करना था बल्कि अल्लाह ही ने हल करना था, तो अगर मैं अकल और तदाबीर इस्तेमाल कर भी रहा था तो असल में तो सिर्फ सुन्नत की वजह से कर रहा था, इस वजह से नहीं कि इसकी वजह से मसले हल हो जाएंगे, मसला तो अल्लाह ही ने हल करना था। ये शख्स जब अल्लाह से दुआ करता है ना, तो उसकी दुआ में और उस शख्स की दुआ में जो कि अपनी तदाबीर और अपनी मेहनतों को असल जान करके मुश्किलात हल करने की कोशिश कर रहा था, इन दोनों की दुआओं के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है इन दोनों दुआओं के अंदर। ये भी अल्लाह से दुआ मांग रहा है, वो भी अल्लाह से दुआ मांग रहा है, लेकिन इसके दिल का हाल और उसके दिल का हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला दोनों के दिलों का हाल को जान, दिलों के हाल को जान। तो अगर हम अल्लाह अल्लाह के अहकामात इनको नॉन रियल समझते हैं, या इसको जो है वो सिर्फ इज्तिमा की हद तक समझते हैं, या सिर्फ बयान की हद तक समझते हैं, और अपनी रियल लाइफ में इनको एंटर नहीं होने देते हैं, अब हमारी दुआ जो है वो दुआ कैसे बन सकती है? अब हमारी दुआ दुआ कैसे बन सकती है? वो तो वापस हमारे ऊपर मार दिए जाने वाली चीज बनेगी, जिसको कि हमारे ऊपर मार दिया जाए इस चीज को, अल्लाह ताला की नाराजगी सबका सबब बनेगी ना ऐसी दुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बात की समझ, अमल की तौफीक अता फरमा दे, तौबा की तौफीक अता फरमा दे। जो हमारा रवैया अपने परवरदिगार के साथ है, जो हमारी सोचें अपने परवरदिगार के बारे में, सबसे पहले तो अल्लाह ताला उससे हमें तौबा की तौफीक अता फरमा दे। वाखिर दुआ अलहम्दुलिल्लाह।